से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ज्ञान सूर्य बाबा का प्रकाश, तपस्या के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाने वाले सूरज भाई, स्वमान में रहकर सबको स्वमान में स्थित कराना आप में विशेष कला है। 1964 में आपने ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद 1968 में साकार बाबा की प्रेरणा से आप मधुबन में समर्पित हुए और तभी से आप प्यारे बाबा का भंडारा पांडव भवन ज्ञान सरोवर शांतिवन में निमित्त भाव से संभालते हैं। ज्ञान रत्नों की विभिन्न विधियां और योग के प्रयोग की युक्तियां आप भाई बहनों को देते रहते। पीस ऑफ माइंड चैनल पे भी आपकी क्लासेस क्वेश्चन आंसर आदि आते रहते। गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे है, हमारी शान इसी में है कि आप भट्टी में हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करने पधारे हैं। ऐसे महान आत्मा का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आज का आपका टॉपिक है ज्वालामुखी योग द्वारा संस्कार परिवर्तन। आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी,
ओम शांति। कौन कौन अपने योग से संतुष्ट हैं, हाथ उठाएंगे जरा। अच्छा, योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सहज लेकिन अति गुह्य भी है। वो एक लाइन का भी है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, और वो इतना गुह्य है कि उसको सीखने में ही जीवन लग जाता है। उसकी सर्वोच्च स्थिति बीज रूप, इसको ही ज्वाला स्वरूप, ज्वालामुखी, बिंदु रूप, निर्बीज स्थिति, ये भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। योग जब अग्नि बन जाए जिसमें विकार और विकर्म नष्ट होने लगे, वो योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति। और योग अग्नि तब बनता है, ध्यान से सुन लेंगे अब, मन जब शांत हो जाए और बुद्धि बाबा पर स्थिर हो जाए। मन को शांत करना ये संपूर्ण अशरीरी स्थिति है। मन भागे नहीं और हम लंबा समय अपनी बुद्धि को बाबा पर स्थिर कर दें, चाहे परम धाम में, चाहे बाबा को अपने पास बुला लें। मैं कुछ विधि आपके सामने रखूंगा ताकि इस अभ्यास को एंजॉय कर सकें, इसका रस मिले जीवन में, ये सूखा न हो जाए। किसी किसी ने योग को बड़ा सूखा बना दिया होता है, बुद्धि को खींच कर स्थिर करते हैं बाबा पर। किसी को सिर दर्द होने लगता है, किसी को 10 मिनट के बाद होता नहीं और शिकायतें हो जाती हैं, कईयों के ब्रेन पर बुरा असर आने लगता है। इसको बिल्कुल सहज बनाएंगे, आनंदकारी। क्या क्या इसके लिए करेंगे? पहली चीज तो हम इस पे ध्यान दें कि बीज रूप कौन हो सकते हैं, धारणाएं क्या क्या हैं। इसके पहले बोलो, थोड़ी सी धारणाएं निकालेंगे, बहुत नहीं। कौन बीज रूप के अभ्यास में सरल सफल हो सकते हैं? इसको ही बाबा ने एक दूसरा बहुत सुंदर शब्द दिया है, उस पर भी आप ध्यान देंगे। मन बुद्धि को जहां चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें स्थिर कर सकें, ये सर्वश्रेष्ठ कला है। इस कला के आ जाने से बाकी सभी कलाएं स्वतः ही आ जाती हैं। तो क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्या धारणा होनी चाहिए, पांच पांच बातें निकालेंगे बस। बोलो, धारणाओं में पहली है वैराग्य वृत्ति। आपने तो सबसे बड़ी पहले ही बता दी, डर जाएंगे लोग। ठीक है, ये धारणा बहुत सुंदर है। और बोलो, व्यर्थ से मुक्ति के ही पांच धारणाएं हैं? नहीं, और बताओ। कुछ चीजें सब ब्राह्मणों की हो चुकी हैं, खान पान शुद्ध है, हैं? अंतर्मुखता पहली धारणा। जो मनुष्य बहुत वाचा में रहता है वो योगी नहीं बन सकता, जो व्यर्थ सुनने में रहता है उसे भी योग का सुख नहीं मिलता, जो व्यर्थ पढ़ने में और व्यर्थ देखने में लगा रहता है उसे भी योग का रस नहीं आता। ये सब हैं कर्मेंद्रियों के रस, इन्हें छोड़कर अंदर जो आत्मा है उस पर आ जाए, ये अंतर्मुखता है। न मुख का रस, न कानों का, न जीभ का, न आंखों का, इन सभी रसों से मुक्त अंतर्मुखी। दूसरी धारणा, हाँ, संतुष्टता बहुत अच्छी चीज है। संतुष्टता, और संतुष्टता की डेफिनेशन है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक ही लाइन में बस। जो कुछ लेना था, जो कुछ मिलना था, वो सब हो गया, बस पूरा हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरी है ठीक है, ये भी अच्छी है। एक व्रता भी बहुत अच्छा, अनासक्त वृत्ति बहुत अच्छी। और हल्की निकालने पहले सरलता, जो सरल चित्त हैं वो सरल योगी हैं। सरलता माना हर बात को सहज भाव से लेना। किसी किसी की क्या आदत होती है, हर बात को तूफान बना लेना, छोटी सी बात से परेशान हो जाना, क्या होगा, ये क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, बहुत चलते रहना मन में, सरल हल्के। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ज्यादा परेशानी की बात नहीं, सब अच्छा हो रहा है, सरलता। चौथी धारणा है निरहंकारिता, है? हाथ उठा के बोलो जरा। हाँ, वो प्रैक्टिस में आएंगे, निरहंकारिता। बहुत ही अच्छी धारणा है, आप जानते हैं इसे। चार हो गई, पांच? पांचवी एक बहुत बड़ी, वो बहुत बड़ी है, उस पे सभी को कार्य करना है, साक्षी भाव। धारणाएं बहुत आ जाएंगी। जिसको अपने योग के चार्ट को और अच्छा बढ़ाना है, समर्पण भाव, क्षमा भाव, शुभ भाव, इनकी भी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर साक्षी भाव, साक्षी भाव को सिंपली हम कहेंगे धामा का जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है उसकी प्रैक्टिस करना। इससे मन बहुत शांत रहेगा। मान लो आपके घर में बच्चे हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, चार बच्चे हैं, चारों अलग अलग तरह के हैं। ड्रामा क्या कहता है, सबका पार्ट अलग अलग है, सबका भाग्य अलग अलग है। माँ बाप की इच्छा तो अच्छी होगी, मेरे बच्चे ऐसे बने, पर उनका भाग्य, उनका पाठ, उनकी बुद्धि, उनके पास के कर्मों के खाते, वो सब भी तो लेकर आए हैं ना वो साथ में। ये बात भूलनी नहीं है कि जो आज हमारे बच्चे हैं वो हैं तो छोटे बच्चे, परंतु आत्मा बूढ़ी है। 5 साल ही आयु अगर आत्मा की गिने, अनादि है, पर 5 साल के खेल में वो बूढ़ी हो गई ना, न जाने साथ में क्या क्या लाई है। इसलिए साक्षी भाव अपनाना। साक्षी भाव का अर्थ ये नहीं कि हमें कुछ करना नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे ठीक है इनकी तकदीर, ये नहीं। साक्षी भाव इसी में जुट जाता है, कर्तव्य भाव। साक्षी भाव का अर्थ है निर्संकल्प और हल्के रहना, साथ में अपने कर्तव्य पालन करना, जो हमारी ड्यूटी है वो करना, जो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करना। और अगर साक्षी भाव बहुत अच्छा आ जाए तो जीवन में अनेक समस्याएं आती ही नहीं। इस रहस्य को जान लेना बहुत जरूरी है। अगर साक्षी भाव आ जाए तो बच्चे बिगड़ेंगे ही नहीं, अगर साक्षी भाव आ जाए। बहुत अच्छा बाबा का महावाक्य है, तुम साक्षीपन की सीट पर स्थित रहो तो अनेक समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। ये गुह्य महावाक्य हैं। इन सब से चित्त को शांत करना है। जो चित्त शांत करे उसी का ये ज्वाला स्वरूप योग संभव होगा। जो चित्त को शांत न कर पाए, योग उसके लिए कठिन सब्जेक्ट है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं, केवल ज्वाला स्वरूप योग ही नहीं, योग जितने तरीकों से भी अभ्यास किया जा सके करना ही चाहिए, क्योंकि योग की बाबा ने अलग अलग तरीके बता दिए हैं। कभी ऐसे करो, कभी ऐसे करो। जिसको बाबा कहते आए योग को मनोरंजन बना लो, कर्म योग बना लो। कईयों के साथ क्या होता है कि बीज रूप अभ्यास उनसे होता नहीं और दूसरे योग वो करते नहीं, संकल्प से कि इससे तो भी कर्म विनाश नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं हो पाता। योग का लक्ष्य केवल विकर्म विनाश करना ही नहीं है। सोच लें अब क्या क्या है। योग है जीवन में ईश्वरीय आनंद देने वाला। योग माना हम भगवान के साथ रहते हैं। योग है हमारी कर्मेंद्रियों को शीतल करने वाला। योग है संस्कारों को दिव्य बनाने वाला, मनोविकारों पर विजय प्राप्त कराने वाला। तो अलग अलग तरीके जो योग के हैं वो भी हमें करने चाहिए। एक को दूसरे को कॉपी नहीं करना है। आपको कोई कहेगा मैं तो फट से परम धाम में बाबा की याद में स्थित हो जाती हूँ, आप कहेंगे हमसे तो हुआ नहीं जाता, पता नहीं क्या है, निराश हो जाएं। नहीं, आप जिस तरह से योग का रस लेते हैं उसको लेते रहो और उसके बाद बीज रूप स्थिति आप ही आती रहेगी। इसलिए हरेक का मन और हरेक की बुद्धि संस्कार अलग अलग हैं। एक को जो चीज सहज है दूसरे को वो कठिन हो सकती है, एक को जो बहुत कठिन है दूसरे के लिए वो आनंद बन सकती है। इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ का मार्ग खुद चुनना होता है। ये बात सबको ध्यान रखनी है। तो अब 5 प्रैक्टिस योग के लिए, 5 प्रैक्टिस निकाल लें जरे। कौन कौन सी करेंगे जिसे बहुत सहज हो जाए हमारा योग। पावरफुल योग भी इसे ही कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, सरल। फिर से रिपीट करता हूं, मन शांत होकर बुद्धि बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाए। मन शांत, योग में हम मन से मनन भी करते हैं, अच्छे संकल्प भी उठाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और इसके पीछे रहस्य भी यही है, जिसके मन में जितने सुंदर संकल्प होंगे उसका मन उतनी ही जल्दी निसंकल्प होगा। इसलिए जबरदस्ती मन को निसंकल्प करने का नहीं सोचना है, सुंदर संकल्पों की रचना करते हुए योग का आनंद लेते लेते मन स्वतः ही शांत होने लगता है। पांच अभ्यास, जिसके द्वारा हमारा योग बहुत पावरफुल हो जाए। जिसको भी अच्छे योगी बनना हो, हाथ उठाया आप में से आधो ने, नहीं उठा दिया था, आधो ने हाथ उठा दिया था कि हम अपने योग से संतुष्ट हैं। अब है योग के चार्ट को भी बहुत बढ़ाना। ऐसे नहीं कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। किसी का योग कर्म में बहुत अच्छा होता है, किसी का योग घूमते फिरते बहुत अच्छा होता है, तो किसी का बैठ कर बहुत अच्छा होता है। ये सबकी अपनी अपनी मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इसके बारे में जैसे मैंने कहा, दूसरों को हमें फॉलो नहीं करना होता। आपका बैठ कर बहुत अच्छा होता है तो आप बैठिए, आपका कर्म में बहुत अच्छा होता है बैठ के नहीं अच्छा होता तो कर्म में करिए। पांच अभ्यास बोलो कौन कौन से जो हमें योगी बना दें, सफल योगी बोलो। ए शरीरीपन, बार बार जब हम ये अभ्यास करेंगे, मैं ये हूँ ये नहीं, मैं चमकती हुई ज्योति हूँ ये देह नहीं, इसके भिन्न भिन्न अभ्यास हम कर सकते हैं। कभी मैं आत्मा स्तन में प्रवेश किया है अवतार हूँ, कभी मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ भ्रकुटि की कुटिया में, कभी ये भ्रकुटि मेरा सिंहासन है मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, कभी मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, कभी इस देह से आत्मा बनकर निकल कर बाबा के पास जाना वापिस आना। ये भिन्न भिन्न ड्रिल हैं, ये ड्रिल हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि बाबा कभी कुछ बता देता है कभी कुछ। बाबा ने बहुत सारी बातें सिखाई हैं, क्योंकि एक ही अभ्यास रोज रोज करने से क्या होगा, मन बोर होगा। ये सबके मन की स्थिति ये है, मेंटलिटी ये होती है मनुष्य की। इसलिए ये अलग अलग अभ्यास, आप 10 अभ्यास भी चुन सकते हैं आत्मा के शरीरी होने के। दूसरा अभ्यास अब बहने बताएंगे है? पांच स्वरूपों का अभ्यास बहुत अच्छा, पांच स्वरूपों का अभ्यास सचमुच बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अप्रोच है। इससे हमारा योग भी बहुत अच्छा लगता है, और विशेष रूप से जिस जिस स्वरूप का हम अभ्यास करेंगे क्या होगा आगे बोलो, क्या होगा, उसी स्वरूप के गुण और लक्षण जीवन में आने लगेंगे। तो योग का, क्योंकि एक लक्ष्य स्वयं को सर्वगुण संपन्न संपूर्ण पावन बनाना भी है, इसलिए उसमें पांचों स्वरूप जिसको स्वदर्शन चक्र कहते हैं, इसका अभ्यास बहुत अच्छा होना चाहिए। विशेष रूप से दिन में करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो 5 बार सवेरे 5 बार शाम को, 10-10 मिनट भी लगा दें योग से पहले तो योग बहुत पावरफुल होगा। तीसरा अभ्यास, पीछे वाले भाई ठहरो, भाइयों का नंबर है। तीसरा अभ्यास अभ्यास आत्मिक दृष्टि, जिसे देखें चमकती हुई आत्मा देखें। ये योग को सफल करने का बहुत बहुत सुंदर अभ्यास है, बहुत सुंदर। एक दिन आप करके देखो, सवेरे से शाम धुन लगा दो, जिसको भी देखेंगे आत्मा ही देखेंगे, शाम तक देखना चित शांत हो जाएगा, क्योंकि मन को भटकाने वाली है दैहिक दृष्टि। चौथा अभ्यास, अब बहने बताएं पीछे की, उस अभ्यास से आप परिचित हैं बहुत ज्यादा। चौथा अभ्यास स्वमान, जो हमें स्मृति स्वरूप बनाता है। पांच स्वरूपों में भी स्वमान आ जाते हैं पांचों, लेकिन और भी बहुत अच्छा स्वमान का अभ्यास। स्वमान के अभ्यास के बारे में मैं आपको एक दो चीज कह दूं जो आपके बहुत सारे प्रश्नों का और समस्याओं का हल है। जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलता है। कोई सोचे कि ज्ञान में जब से आ गए लोग सम्मान नहीं देते, तो उत्तर हो गया स्वमान की प्रैक्टिस। ठीक है, दूसरा ध्यान से सुन लें। जो श्रेष्ठ पोजीशन में रहते हैं, पोजीशन माना स्वमान, उनका कहीं अपोजिशन नहीं होता, विरोध नहीं होगा। विरोध बहुत होता है बाबा के बच्चों का, होता है ना सब जगह। स्वमान से इस विरोध को समाप्त करेंगे। तीसरा, ये सब बाबा के महावाक्य हैं, जो स्वमान की सीट पर सेट हैं उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट हैं उनके जिम्मेदार वो खुद हैं। अगर आप समझें बाबा हमारी जिम्मेदारी ले ले, तो स्वमान की सीट पर सेट रहना है। और एक सुंदर बात जो आपकी समस्याओं का हल है, स्वमान में रहने से बोल में बहुत प्रभाव आ जाता है। जो लोग ये कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं, उन्हें दो अभ्यास करने चाहिए, स्वमान और आत्मिक दृष्टि। बच्चों को आत्मिक दृष्टि से देखो, स्वमान के अभ्यास करो, बच्चे आपकी बात सुनने लगेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें स्वमान से जुड़ी हैं। मैं एक छोटा सा अभी का अनुभव सुना दूं। मैं आया, छोटे लाल भाई है बाहर, तो उसकी कुछ बात थी पीछे, उसने मुझे कहा मैं इसमें सफलता पाना चाहता हूं, क्या करूं। मैंने उसे छोटी सी विधि बताई, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उठते ही सात बार याद करना। अब परसों की बात सुनो, तीन चार दिन पहले लंदन से अमेरिका से उसे एक फोन आया, मेरा बिजनेस ठप हो गया है, इतना काम बिगड़ गया है, मैं सुसाइड करने का सोचता हूं अनेक बार। इसने उसको बताया सुसाइड न करो, समझाया और कहा ये दोनों अभ्यास सवेरे सात बार करके देखो तुम भी। तो उसने पहले दिन किया तो और घाटा हो गया, लेकिन उसने सोचा दो चार दिन करके तो देखता हूं, दूसरे दिन किया तो डबल फायदा, तीसरे दिन किया तो तीन गुना फायदा, कहा पांच दिन में तो सारा ही खेल बदल गया उसका, केवल एक स्वमान के अभ्यास से। सोच लो जो व्यक्ति मरने जा रहा है क्या होता है इससे। ये बात मैं आपको थोड़े में पहले ही कह दूं, मैं उसका विस्तार नहीं करूंगा। सवेरे जब हम आंख खोलते हैं, उठते ही पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन एक्टिव रहता है। उस टाइम जो संकल्प हम कर लेंगे, हमारे अंतर मन में इतनी शक्ति है वो वही करा देगा। उसमें भी बहुत ध्यान आप देंगे अपने जीवन में, उठते ही पहला संकल्प जो आपने किया उसका जीवन पर अति अति गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने उठते उल्टा सोच लिया मेरा तो भाग्य ही खराब है, सब काम बिगड़ रहे हैं, तो समझ लो भाग्य को बिगाड़ दिया। और उठते ही आप करके देखना 5-7 दिन, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। देखना क्या होता है, उठते ही किसी ने सोच लिया, बाबा गुड मॉर्निंग, मैं तो आपकी गरीब बच्ची हूँ। खुश होते हैं ना ऐसा कह के कि बाबा गरीब निवाज है, तो हम बता दें बाबा को हम गरीब हैं, बाबा प्यार करेगा। चंद्रकला दीदी सोचते हैं ऐसे, तो समझ लो आपने गरीबी को निमंत्रण दे दिया। उठते ही जरा करके देखना, कल से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, माया जीत हूँ, काम जीत, क्रोध जीत हूँ। देखना रिजल्ट, 7 दिन करके देखो, 3-3 बार कर लो, लेकिन बहुत खुले मन से, हल्के मन से नहीं, कि अंदर से तो आवाज आ रही तुम तो भाग्यवान हो नहीं, और बाहर से कह रहे हैं बहुत भाग्यवान हूँ, बिल्कुल वही आवाज निकले। हाथ ऊपर करके रोज कहने लगना, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपका लाखों लाखों बार शुक्रिया। ये चीज करके देखना आप जीवन में, हर फील्ड में इसका महत्व है, क्योंकि ये मन की शक्ति बहुत जबरदस्त है। कहीं सेवा न बढ़ रही हो, आपके पास गीता पाठशाला हो, आपकी सेवा नहीं बढ़ रही है, आप सोचते रहते हैं यहाँ सेवा नहीं बढ़ती, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, इसको चेंज कर दो। सवेरे उठते ही संकल्प करो कि 2 मास में ही मेरा ये क्लासरूम फुल रहेगा। इसको करने में तो पैसे खर्च नहीं होते ना, करके देखना जरा क्या होता है इससे, हैं? मकान भी मिल जाएगा, बड़ा बड़े का संकल्प कर लो वो भी मिल जाएगा। मुझे बाबा की एक बात नशे में रहती थी, जैसे आपने सुनाया, बाबा ने फिर वो कही भी अव्यक्त में, जिसके बुलावे पर भगवान आ जाता है, क्या उसके बुलावे पे मकान नहीं आएगा? आएगा या नहीं, अब जरा आह्वान करके तो देखो। लेकिन पहले ही संकल्प ये होते हैं ना, मकान मिलता ही नहीं, बहुत मेहनत कर ली मिलता ही नहीं। संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है, जो संकल्प हम दिल से बार बार कर रहे हैं उसको हम निर्माण कर रहे हैं। अगर किसी ने सोच लिया मेरे बच्चे तो बहुत बिगड़ गए, सुधरते ही नहीं तो सुधरेंगे नहीं, और अगर वो ये संकल्प करने लगे उठते ही, मेरे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, ये तो देवकुल की महान आत्माएं हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, चरित्रवान हैं, इसका रिजल्ट आप देखना। तो अपने संकल्पों को जितना सुंदर करेंगे, चाहे बीज रूप स्थिति का अभ्यास हो, रोज सवेरे उठते ही 10 मिनट अपने को सुंदर संकल्पों से चार्ज कर देना। समझते हैं ना ये भाषा, चार्ज, एकदम फ्रेश हो जाए मन, आनंद विभोर हो जाए, नशे में आ जाए, ऐसे संकल्प स्वयं चुन लेना। जो भी कठिनाई जीवन में हो, लौकिक अलौकिक, वैसे संकल्प जो उन कठिनाइयों को दूर करें, बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद करना। तो अभ्यास पर हम आ रहे थे, आत्मिक दृष्टि, ऐसरीरीपन, 5 स्वरूपों का अभ्यास, स्वभान, और पांचवा यही बाबा की याद का, इसको हम एक शब्द देंगे इंग्लिश में विजुअलाइजेशन, हिंदी में आत्मिक स्वरूप पर और बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना, बुद्धि के नेत्र से देखना, थोड़ी थोड़ी देर भी स्थिर कर देना है स्वयं को। इसके लिए चाहिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस, लेकिन अगर वो पहली चारों चीजें बहुत अच्छी अभ्यास में आएंगी तो ये पांचवी चीज बहुत सरल हो जाएगी। तो हमें ये अभ्यास करना है। अब अभ्यास पर आ जाएं कुछ और, कभी हम बाबा के पास परम धाम में है। बाबा की संपूर्ण एनर्जी, उसकी संपूर्ण शांति, प्योरिटी, शक्तियां मुझ में समा रही हैं। जैसे हम उसके पास बैठे हैं, केवल बैठना है, जिसके पास हम बैठते हैं उसका सब कुछ हम में आने लगता है ना। मोटे उदाहरण हैं, बर्फ की सिल्ली के पास हम बैठ जाएं 15 मिनट, क्या होगा? ठंडक आएगी ना, उसकी तरंगे जो हैं ठंडी हमें आने लगेंगी। गर्मी के पास बैठने से गर्मी, सर्वशक्तिवान के पास बैठने से शक्तियां, शांति के सागर के पास बैठने से शांति, पवित्रता के सागर के पास पवित्रता। तो बीज रूप की एक प्रैक्टिस अपनाएंगे, विधि। देखो कैसे करेंगे, अगर हमें स्वयं में शांति की शक्ति भरनी है तो पहला संकल्प, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मा को देखेंगे, अपने स्वरूप को बहुत क्लियर, भ्रकुटि के मध्य में अपना एक बहुत सुंदर और तेजस्वी स्वरूप बनाओ बुद्धि में। मैं ऐसी हूँ, केवल बिंदु नहीं, ये डॉट नहीं जिसे एनर्जी निकल रही है बहुत। मैं हूँ मास्टर ज्ञान सूर्य, बहुत तेजस्वी। छोटा सा उदाहरण इसके लिए, एक बल्ब 0 वाट का होता है, रोशनी तो वो भी कर देता है रात को। हम ऐसे बल्ब नहीं हैं। कैसे, कितने वाट के सोच लो आप, कितने वाट के बल्ब हैं? बल्ब तो मोटा होता है, हम बिल्कुल सूक्ष्म हैं। और जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही पावरफुल होती है। आत्मा और परमात्मा अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। ये बात सर्वव्यापी की बात को भी कट कर देती है। परमात्मा अति सूक्ष्म है, फैला हुआ हो तो शक्तिशाली नहीं, फैली हुई चीज शक्तिशाली नहीं होती। ये शब्द वेदों में भी है, परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, प्रकाश स्वरूप है। तो आत्मा का स्वरूप यहाँ देखें, मैं आत्मा पीसफुल शांत। बाबा, वही संकल्प, बाबा शांति के सागर, हम उसके पास, चाहे हम यहाँ, उसकी शांति की किरणें हमें आ रही हैं। दोनों अभ्यास किए जा सकते हैं। जैसे मैं ब्रेन की बात आपके पास सामने कर रहा था, किसी किसी को परम धाम में बुद्धि को ले जाना भारी लगता है, सिर दर्द होता है, या होता ही नहीं वो, तो वो ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा यहाँ, परम धाम में बाबा शांति के सागर, उसकी शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। चलते फिरते करें, एक शांति का सुंदर फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, मैं अब अभ्यास नहीं कराऊंगा क्योंकि क्लास पूरा करना टाइम पे। दूसरा, पवित्रता, मैं परम पवित्र, नहीं इतना तो नहीं, खैर मुझे रात्रि क्लास मैंने दे दिया है, यहाँ 7 तक करा दूँ? चलो भाई, 7 तक की छुट्टी मिल गई, थोड़ी आवाज बढ़ा देंगे थोड़ी सी। चलो तो अभ्यास करेंगे फिर। एक मिनट तक अपने को भ्रकुटि की कुटिया में बैठी हुई तेजस्वी आत्मा देखेंगे। मैं चमकती हुई मणि, केवल मैं, कुछ क्षणों के लिए फील करें, मानो ये देह है ही नहीं, केवल मैं। मैं शांत स्वरूप, मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा विस्तेह से निकलकर चली ऊपर की ओर, आत्मा उठती हुई जा रही है अपने धाम। शांति के सागर बाबा, देखें उनके स्वरूप को। मैं आत्मा उनके पास पहुंच गई, अब मुझे केवल वो दिखाई दे रहे हैं, महाज्योति, शांति के सागर। उनकी शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं। यहां से मैं आत्मा वापिस देह में मस्तक सिंहासन पर, मैं परम पवित्र, मैं पवित्रता का सूर्य, बहुत तेजस्वी, मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं गोल्डन कलर में। यहां से मैं पवित्र आत्मा उड़कर चली पवित्रता के सागर के पास, परम धाम में, महाज्योति, पतित पावन, पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। बाबा की पवित्रता मुझ में समा रही है। यहां से मैं आत्मा पुनः वापिस देह में भ्रकुटी सिंहासन पर मैं शक्ति स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान बहुत तेजस्वी शक्तियों से भरपूर मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा बुद्ध चली परम धाम बाबा पर बुद्धि स्थिर करें सर्वशक्तिवान उनकी शक्तियों की किरणों से जैसे कि सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है। उनके पास मैं हूं यहां से मैं आत्मा वापिस देह में ओम शक्ति बहुत अच्छे अनुभवों के लिए जिनको संगम युग पर ईश्वरीय रस जीवन में भरना है सवेरे योग करें बहुत अच्छा। पहले 10 मिनट स्वयं को चार्ज करें फिर बाबा को शुक्रिया करें। इससे मन खुशी और आनंद से भर जाएगा और जब मन आनंदित होता है तो स्थिर हो जाता है। मन की ये मनोविज्ञान है। मन जब आनंदित है तो वो शांत है। फिर करेंगे भिन्न भिन्न योग के अभ्यास और दिन में माताएं तो 15-15, 20-20 मिनट 3 बार योग करें। भाई लोग भी 10-10 मिनट जरूर निकाल दें 3 बार और भिन्न भिन्न तरह से योग अभ्यास करें। जैसे मैं पहले कह आया कुछ योग की विधि से विकर्म विनाश होंगे कुछ से माया को जीतने का बल प्राप्त होगा विशेष रूप से स्वमन से कुछ से हमारे संस्कार दिव्य हो जाएंगे, कुछ से हमारे अंदर सद्गुण आते जाएंगे, तो जो हमारी सब ये बातें हैं, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये सब चीजें ज्ञान के बल से और योग के बल से आत्मा में आती जाएंगी। तो हमें बाबा के साथ रहना है ताकि उसके संस्कार हम पर अपनी गहरी छाप डालते जाएं। उसके संस्कारों को कुछ भागों में बांट लें हम, ज्यादा नहीं, मैं फिर पांचवी बात करूंगा। बाबा के संस्कार हैं सुख देने के, वही संस्कार हम भी धारण करेंगे। बाबा का संस्कार है बहुत प्यार बांटने का, अनकंडीशनल लव, कोई शर्त नहीं है, सबके लिए समान प्यार, प्यार देने का संस्कार। बोलो तीसरा, वाणी कैसी है? दोनों बाबा कर ले हम, दोनों मात पिता, वाणी कैसी बाबा की? मीठी, तो ये सब छोटा है थोड़ा। भगवान की वाणी वरदानी, स्वमान में स्थित करने वाली, निराश व्यक्ति में आशाओं के दीप जलाने वाली। देखो बाबा के बोल हम सबने सुने हैं ना, अव्यक्त में कितनी बार सबने सुने, सुने हैं ना सबने, क्या होता है बाबा को सुनकर, होता है ना बहुत कुछ। बाबा ऐसे ही बैठा है और सभा में अनेकों को फील हो रहा है बाबा का स्वरूप बड़ा प्यार का था, तो उसी में से कुछ ये भी कह रहे हैं आज तो बाबा धर्मराज था। मैं पूछा करता हूँ, बहुत ग्रुप मिलते हैं ना नीचे, तो कैसा लगा बाबा? मैं ये प्रश्न सबसे करता हूँ, तो एक ही ग्रुप वाले कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, क्यों होता है अलग अलग अनुभव? बाबा तो संपूर्ण है, उसकी दृष्टि से प्यार भी झलक रहा है, सब मेरे बच्चे आए हैं ना, कोई बच्चे ऐसे भी आए होंगे जिसका चेहरा उसने 5000 साल के बाद ही देखा होगा, जो माँ बाप बैठे हैं कैसा लगता है उन्हें जब उनके बच्चे 5 साल बाद आते हैं मिलने, क्या होता है? बस खुशी, सोच लो क्या क्या होता है, उन्हें देखते ही रहे, होता है या नहीं? माताएं तो कहेंगी मेरे सामने बैठे रहो, जी भर के देख लूं, बहुत साल बाद आया, तुमने बहुत रुलाया मुझे। बाबा ये तो नहीं कहता। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ अपने को आनंदित करने के लिए कि जब बाबा अंतिम बार इस धरा पर आएगा हमसे मिलने, उसे पता होगा इसके बाद मुझे नहीं आना है, लास्ट बार अपने प्रिय बच्चों के चेहरे देखेगा साकार में। ऊपर से तो सब कुछ देख सकता है, पर नीचे का देखना अलग ही है ना, दूर से देखना और पास से देखना अंतर होता है ना, तो कैसा लगेगा उसे भी कि बस अब अंतिम बार देख रहा हूं। तो बाबा के ये सब संस्कार है ना, सबको शक्तियां देना, सबकी मदद करना, ये सब संस्कार हैं बाबा के। कोई बच्चा अगर बाबा को सुना दे कि बाबा मेरे में ये कमी बहुत रह गई, इस कमी से मैं बहुत तंग हूं, तो बाबा क्या करता है? उसे सकाश देता है, इसकी ये कमी निकल जाए। दोनों बाबा सवेरे सकाश देंगे, उस समय भी देंगे। ये संस्कार है ना बाबा के, देने के, सुख देने के, प्यार देने के, वरदान शक्तियां देने के, कितने अच्छे संस्कार हैं, सबकी बिगड़ी को बनाने के। हमारे क्या संस्कार हैं हम देख लें। एक संस्कार की बात करता हूं, ज्ञानियों की तो नहीं है पर किसी में हो तो ठीक कर लेना। एक बहन ने मुझे फोन किया, अभी अभी बेचारी ज्ञान में आई है, कहा 20 साल हो गए मेरी मैरिड लाइफ को, मैं अपने पति से बहुत तंग हो गई हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा क्या हुआ कि सारा दिन मुझे बुरा बोलता है, मेरे कान भी थक गए और मन भी थक गया। कहा मैंने जरा सी गलती नहीं की और पहला शब्द सुनने को मिलेगा तू कुलक्षणी है। कहा ये सब सुनते सुनते अब मेरी सारी शांति और खुशी नष्ट हो गई है, क्या करूं। मैंने तो उसे इतना ही कहा, अब तुमने बाबा का ज्ञान ले लिया ना, अभी उसके शब्द कानों में गूंजते थे अब तक, अब जरा भगवान के शब्द कानों में गुंजाओ। वो ऊपर से कह रहा है बच्ची तुम तो पद्मा पदम भाग्यवान हो, तो बदल जाएगा ना सब। तो ऐसे संस्कार दूसरों को कष्ट देने के, बुरा बोलने के, दूसरे को सताने के, दूसरों को गिराने के, ईर्षा द्वेष के, जिद के, रोने रूठने के, अभिमान के, क्रोध के, ये सब हमारे नहीं है। रिजेक्ट करो इन्हें जरा सच्चे मन से, ये संस्कार मेरे नहीं है। सुनी होगी आपने बाबा की बहुत सुंदर पढ़ाने का तरीका, बाबा कहा करते थे ये संस्कार रावण के हैं, मेरे नहीं हैं। तुम मेरे कहते हो तो वो मेरे हो जाते हैं, तुम रिजेक्ट करो उन्हें, मेरे नहीं हैं, हटो। जिस चीज को हम रिजेक्ट करते हैं वो हमसे दूर जाने लगती है, सूक्ष्म साइकोलॉजी है ये। हमें अपने संस्कारों को डिवाइन बनाना है, बाबा जैसे, देवताओं जैसे, जैसे हमारे संस्कार पहले थे। सोच लो जरा अच्छी तरह, गहराई से चिंतन करेंगे। 2 युग तक हम देवता थे, 2 युग 2500 साल, तो देवताओं के सारे संस्कार हमारे अंदर हैं या नहीं? वो दबे हुए हैं। जैसे कोई 50 साल पहले की फाइल आप निकलवाना चाहो, उसके ऊपर 100 फाइलें रखी हों, धूल भी जम गई हो सब पे, आप कहो भाई ये फाइल मुझे तो चाहिए किसी ऑफिस से, वो आपको निकाल के देना चाहते हो तो कैसे निकलती है, इतनी सारी फाइलें हैं ना, ढूंढना पड़ता है, धूल जम जाती है, उसको साफ किया जाता है। हमारे भी जो देव संस्कार हैं, उनके ऊपर हमने बहुत सारी फाइलें जमा दी हैं, धूल भरी, न जाने क्या क्या, लेकिन वो हमारे अंदर वो संस्कार हैं जरूर, उनकी डिग्री भले ही कम हो गई हो हमारे अंदर हैं। देखो कई बाबा के बच्चों के अनुभव हैं, उनको बाबा का झंडा बड़ा आकर्षित करता था, झंडे को देखते देखते बाबा के बन गए। दूसरों के अनुभव, उन्हें सफेद कपड़े बहुत आकर्षित करते थे, जब वो बहनों को देखती थी सफेद साड़ी पहन के जा रहे हैं, आकर्षण होता था, बाबा के बन गए। क्या है ये सब? देव संस्कार, देव कुल की आत्माएं हैं ये। देव कुल की आत्माओं को देव कुल वालों की ओर आकर्षण होता है, उन्हें प्योरिटी की ओर आकर्षण होता है। तो क्या करेंगे संस्कार बदलने के लिए? एक तो बीज रूप से बदलेगा, बाबा के साथ हम बैठते हैं, उसके संस्कार हम में भरते रहते हैं, एक तो ये तरीका है। लेकिन दूसरा सुंदर तरीका है 5 स्वरूपों का अभ्यास। मैं उनमें से 2 आपके सामने रखूंगा जिसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज आप उसकी प्रैक्टिस 1 बार कर लो सवेरे, और उसका प्रभाव देखना जीवन पर कैसा पड़ता है। ब्रह्मा बाबा की अगर कहानियों पर ध्यान दें तो बाबा को अपने भविष्य का नशा कितना था, सुनिए ना कहानियां। दादी जानकी कभी कभी क्लास में सुना देती थी कि यही छोटा हॉल है ना नीचे, तो इसके पीछे इनके कमरे थे दादियों के, तो वहां से वो जा रही थी दिन में 3 बजे, तो क्या देखा अंदर, बाबा अकेला हॉल में डांस कर रहा है। मस्ती चढ़ी हुई बाबा को, इन्होंने देख लिया और बाबा ने भी इनको देख लिया, कहा बच्ची बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं क्या बनने वाला हूँ। तो बाबा का जो भविष्य स्वरूप था वो सामने था ना, बाकी सब ब्राह्मणों को ये बात मिस है बहुत ज्यादा है या नहीं। बहुत सारे आप में से गृहस्थ में रहने वाले लोग तो गृहस्थ की उलझन में और पुरुषार्थ की खींचातान में ये सब भूले रहते हैं कि हमें कुछ बनना भी है क्या, जो बनेगा बन जाएगा, क्यों इस टेंशन में जाएं। कई लोग कहते हैं नई टेंशन दे दी बाबा ने, ये बनो वो बनो, हम तो ऐसे ही अच्छे, जो मिलेगा ठीक है, मजे से रहेंगे सतयुग में, भरपूर होंगे हैं, जहां सारी दुनिया वहां हम क्यों इस परेशानी में पड़े। लेकिन नहीं, अपने देव स्वरूप को सामने लाओ। चलो कुछ नहीं, देव स्वरूप तो हमारा है ही ना, छोटा या बड़ा, गद्दी पर बैठेंगे या कुर्सी पे, कहीं तो बैठेंगे, उसको अपने सामने लाएं, जरा क्लियर विजन बनाएं, ये है मेरा देव स्वरूप, एक वो चीज। और इससे भी बहुत सुखद फीलिंग देने वाला है हमारा फरिश्ता स्वरूप। मैं कुछ दिनों से एक प्रैक्टिस रोज कर रहा हूं आजकल, मुझे बहुत दिन के बाद वो याद आई, जब यहाँ रहते थे तब वो मैं बहुत करता था, 5-7 दिन पहले मुझे फिर याद आई तो मैंने वो शुरू किया। क्या बाबा ने कभी संदेश में सुनाया था कि अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने खड़ा देखो और उसका आह्वान करो, संपूर्ण स्वरूप का ये मेरा रूप है। तो मैंने उसको इस तरह प्रैक्टिस में लाया, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता क्या होता है? आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में है, देहांश से मुक्त हो गई, हम आत्माएं दो शरीरों में बैठी हैं, एक तत्वों का स्थूल शरीर, दूसरा इसके अंदर फैला हुआ वैसा ही प्रकाश का मन के संकल्पों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर। जैसे संकल्प हम करते हैं वैसा ही वो शरीर निर्मित होता रहता है। तो प्रैक्टिस बहुत सुंदर है, मैं फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। बैठ जाएं आप, फिर ये मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे इस स्थूल स्वरूप से निकलकर आगे की ओर चलता है, हम उसे चलता हुआ देखेंगे अपने फरिश्ते स्वरूप को, कुछ दूर तक जाता है फिर वहां से वापिस आता है और मेरे इस स्थूल शरीर में प्रवेश कर लेता है। 5 बार करना जरा, मैं डबल लाइट हूँ, फरिश्ता माना डबल लाइट, फरिश्ता माना संपूर्ण पवित्र, फरिश्ता माना निर्भय संपूर्ण शक्तिशाली, फरिश्ता माना डिवाइन बहुत दिव्य, जिसके पैर धरती से उठे हुए हैं, अर्थात धरती का आकर्षण, संसार की आसक्तियां, मोह ममता जिसे छू नहीं रही है, पैर ऊपर उठ गए हैं। लेकिन ये सब चिंतन करते करते वो संस्कार पड़ जाएंगे। मैं एक संस्कार पर आपका ध्यान दिलाऊं, कईयों में संस्कार होता है, जरा सी बात हुई भारी हो गए, हल्का रहने का संस्कार हो, कईयों में संस्कार होता है, इन बातों पे आपको बहुत ध्यान देना है, कोई भी एक बात हो गई आज सारा दिन उसको चलाते हैं, खत्म ही नहीं करते, बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, होल्डिंग नेचर नहीं, बातों को पकड़कर चलने की आदत नहीं, कुछ लोगों में होती है, कुछ माताओं में भी होती है, कुछ भाइयों में भी होती है, कोई एक बात पकड़ के रखते हैं। अगर बहन ने बता दिया कि मेरे से ये गलती हुई थी 20 साल पहले, तो उसका पति उसको याद रखता है तुम ऐसी थी, और बीच बीच में सुई चुभाता रहता है तुम ऐसी थी, उसको मजा आता है, ये संस्कार गलत। हर व्यक्ति हर पल बदल रहा है। ये बात बाबा ने 69 में सुनाई थी, मुझे बहुत प्रिय लगी थी। जो व्यक्ति कल था हो सकता है आज वो ना हो, लेकिन हम वही दृष्टि रखते हैं 20 साल पहले जैसा था वैसा ही अब भी है। हर व्यक्ति बदल रहा है, अपनी दृष्टि को दृष्टिकोण को बदलते चलें। तो संस्कारों को सॉफ्ट बनाना है, बहुत सुखदाई प्यार से भरपूर, बातों को पकड़ना नहीं, बातों को छोड़ते चलो। मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी, तब से मैं वो सबको सुनाता हूँ और वो बहुतों के अनुभव की हो गई है। जो मनुष्य बातों को पकड़कर चलते हैं वो आने वाले स्वर्णिम अवसरों को मिस कर देते हैं। ये युवकों के लिए बहुत जरूरी है, आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। जो मनुष्य बातों को पकड़कर रखता है, स्वर्णिम अवसर सबके पास आ रहे हैं रोज, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास वो आते ही नहीं, वो मिस कर देता है उन्हें। और एक बात और जो खुद भी सीखनी है और सबको सिखानी भी है, मान लो कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है, उसके काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, उसका नाम हो रहा है, भिन्न भिन्न तरह से उसकी प्रोग्रेस हो रही है, हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप ये बहुत अच्छी तरह जान लें, हम उस मनुष्य से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, उसके सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो सफलता हमारे पास कभी नहीं आएगी। आप अप्रिशिएट करो, उसकी प्रशंसा करो, नाम हो रहा है, तुम कितने भाग्यवान हो, बहुत नाम कमाया है, वो नाम आपके पास भी आने लगेगा, क्योंकि आपने नाम को अप्रिशिएट किया, व्यक्ति को नहीं। ये दो सुषम बातें सभी ध्यान रखेंगे, फिर से हम बीज रूप स्थिति की ओर चलेंगे। दो बहुत सुंदर अभ्यास, एक मिनट ठहरेंगे, दो बहुत सुंदर अभ्यास ये बाबा के बताए हुए हैं। एक बार अभ्यास करेंगे, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। अब वो परम धाम में नहीं, हम उसका आह्वान करेंगे, बहुत सुखद फीलिंग करेंगे। बाबा धीरे धीरे नीचे उतरता है, इधर आ गया। दूसरी बार, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य बाबा आंखों के सामने, 4-6 फुट पे देखें आप सामने, उसकी रंग बिरंगी किरणें पड़ रही हैं। ये भी ज्वाला स्वरूप योग है, ये मनोरंजक योग है और सरल योग हो जाएगा। अब इन दोनों की प्रैक्टिस 5 मिनट हम करेंगे। परम धाम में ले चलें बुद्धि को, सर्वशक्तिवान को निहारें। बाबा को निमंत्रण देंगे, हे सर्वशक्तिवान, हम आपकी शिव शक्तियां, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे आपको प्यार से बुला रहे हैं, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारा आह्वान सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। बहुत सुंदर रूप देखें, महाज्योति अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर, नीचे में अष्टभुजाधारी शिव शक्ति और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य चमकते हुए मणि आंखों के सामने हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा। उनसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। एक दो और सुंदर अभ्यास मैं आपके सामने रखता हूँ, रोज सवेरे एक बार कर लिया करेंगे, इससे जीवन में बहुत रस भरता है। जीवन में केवल बैठने के समय नहीं, क्योंकि हमें अपने पूरे जीवन को, जिसको बाबा एक बहुत अच्छा शब्द देते हैं, कैसा बनाना है, बेफिक्र बादशाह। इस संसार में हम बादशाह की तरह जिए, कांटों के जंगल में बादशाह बनकर रहे हैं। कुछ अभ्यास बहुत सुखद हैं। एक तो जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको एक खेल की तरह करेंगे, ब्राह्मण फरिश्ता सो देवता। तो ऐसा किया करेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में हमारी फरिश्ते की ड्रेस है, ड्रेस माना देहे, राइट साइड में हमारी देवता की ड्रेस है। इधर मैं ब्राह्मण, मैं आत्मा यहां से निकली, अभी जाते हुए देखेंगे आत्मा को, और फरिश्ते की ड्रेस में प्रवेश कर लिया और मैं हो गया फरिश्ता। वहां से निकली, देवता ही ड्रेस में प्रवेश कर लिया, हम बन गए देवता। फिर वहां से निकले यहां, बहुत आनंद देगा ये अभ्यास, खेल की तरह लगेगा, क्योंकि योग अभ्यास में जैसे मैंने पहले कहा आपको, सुंदर संकल्पों के साथ योग करना है। शुरू में निर्संकल्प होकर योग करेंगे तो विचलित होगा मन, मन की खुराक है सुंदर संकल्प। जब उसको सुंदर संकल्प मिलते हैं तो मन तृप्त होके शांत हो जाता है। एक ही अभ्यास। दूसरा, सूक्ष्म लोक में जाकर कैसे जाएंगे, कई जब सुनते हैं सूक्ष्म लोक में जाना है, फरिश्ता बन के जाना है, बड़ा मुश्किल काम है, बने ही नहीं है, कैसे जाएंगे हैं? अरे नहीं, सिंपल। देखो मैं आपको अभी कहूं कि नीचे जो बाबा का कमरा है, जरा वहां जाके बैठो, यहीं से क्या करेंगे, बस बैठ गए वहां जाके, या सोचेंगे मैं फरिश्ता हूं, इधर से चला उधर गया, इसकी भी जरूरत नहीं, बस वहां बैठा हो जाएगा ना। तो सूक्ष्म गति ये है कि हम वहीं होंगे, तब हमने केवल अपने को वहां बैठा देखा, तो हमारा सूक्ष्म स्वरूप, हमारी संपूर्ण चेतना वहां पहुंच गई। यहां जैसे हम हैं ही नहीं, यहां बैठे हैं बस स्थूल में, पर यहां नहीं है हम, हम वहां हैं। बस ऐसे ही मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। इसको सिंपल कर दें, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जटिल नहीं, सिंपल। मैं ऊपर हूं, सामने हैं बाप दादा, बाबा को देखेंगे, ब्रह्मा बाबा का स्वरूप, जिसके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं और मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं, ज्ञान सूर्य। बहुत अच्छा योग लगेगा। फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं, फिर बाबा ने अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर पर ऐसे फैला दी हैं और कहा, बच्चे मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। ये फीलिंग रोज बढ़ाती चलना है, हम अकेले नहीं हैं, बाबा हजार भुजाओं सहित साथ है। इसको बढ़ाते बढ़ाते ये इतने कॉन्शियसनेस में आ जाएगी हमारे कि विनाश काल में हमें याद रहने लगेगा, हम अकेले नहीं हैं, डरने की बात ही नहीं, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं सहित। ठीक है, फिर बाबा से वरदान लेंगे। बाबा ने तिलक लगाया और तीन वरदान दिए, विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। इसे स्वीकार करेंगे परम सदगुरु से मुझे ये वरदान मिल गए हैं, ये मेरे साथ हैं वरदान, नशे में आ जाए तो ये वरदान के रूप में काम करेंगे। फिर बाबा ने अपना हाथ सिर पर रखकर हमें स्वमान याद दिलाए, बच्चे तुम साधारण नहीं हो। अब इन तीनों की प्रैक्टिस करेंगे हम 10 मिनट में। रेड लाइट, चलेंगे एक सेकंड में, अपने को ऊपर देखें, चारों ओर सफेद प्रकाश, ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने दूर से आ रहे हैं बाप दादा, मस्तक में महाज्योति, धीरे धीरे मेरी ओर आ रहे हैं, मेरे पास आ गए। और मेरे सिर पर अपनी हजार भुजाएं फैला दी, बोले बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। मस्तक पर तिलक लगाया, और वरदान दिए, विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव, अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, और बोले बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस धरा की महान आत्मा हो, मैंने तुम्हें चुना है महान कर्तव्यों के लिए, मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, तुम शिव शक्ति हो, मास्टर सर्व शक्तिवान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो, जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां सभी के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें सारे संसार के विघ्न मिटाने हैं, तुम विजयी रतन हो, कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है, तुम तो ऐसे माला के मणके हो जिनको स्मरण करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तुम पवित्रता के फरिश्ते हो, इस सृष्टि का श्रृंगार हो, इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो, ये प्रकृति तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की सदा ही प्यासी रहती है। तुम इस जहान के नूर हो, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम पूर्वज हो, विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हें सभी आत्माओं की पालना करनी है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, और दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा उड़ चली परम धाम शांति धाम में, अपनी मुक्त अवस्था में शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। अपने घर में चैन और विश्राम में, डीप साइलेंस में, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।
हम तो चाहते थे कि आपका ध्यान घड़ी की ओर ना जाए। और आपसे हम आनंद लेकर अपने अंदर ये योग की स्थिति को और सशक्त बनाए, ये चाहना थी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा सबको? ताली बजाकर बताओ तो सर। आप हमारे बीच कल पुनः होंगे, इसलिए आज के लिए शुक्रिया कहती हूँ। कल फिर हम आपसे मिलेंगे, आह्वान करेंगे।